ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते दत्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस महान यज्ञ में। ये विशेष यज्ञ हम शुरू कर रहे हैं। यज्ञ जैसे हम नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यज्ञ का मतलब है कि जहाँ यज्ञ कुंड होना चाहिए और यज्ञ करने के लिए घी और आहुति देने के लिए ब्राह्मणास होनी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, तभी ही यज्ञ की पूर्णता है। लेकिन वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक पावन करने वाला जो यज्ञ है वो है भगवान कृष्ण का गुणगान करना। तो इसी कारण से श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो ये कृष्ण कथा है, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला आदि का जो वर्णन है, उनके धाम का, इसका वर्णन इतना प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, महिमा मंडित है कि ये तीनों जगतों को पावन करने का सामर्थ्य रखता है, जिस प्रकार से गंगा है। क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, स्थान हैं, उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि उस वस्तु या स्थान आदि के संपर्क में कोई भी चीज आती है या व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति शुद्ध होने लगता है। इसलिए गंगा को त्रिपथगा कहा गया है। वो तीनों स्थानों में बहती है। एक तो वो बहती है, स्वर्ग में आती है जब उसे मंदाकिनी कहा जाता है। वही गंगा जब पृथ्वी लोक में राजा भगीरथ की प्रार्थनाओं के कारण आती है तो उनको गंगा या जाह्नवी कहा जाता है। और वही गंगा जब पाताल लोकों में, नीचे के लोकों में बहती है तो उनको भोगवती कहा जाता है। तो इस प्रकार से तीनों जगतों को, त्रिलोक को पवित्र करने का सामर्थ्य गंगा रखती है। तो उसी प्रकार से भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो कथा है, वो भी इतनी शक्तिशाली हैं। और यही वास्तव में भौतिक जगत के जीवों के लिए असली मेडिसिन है, दवाई है। जब राजा परीक्षित को शाप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा, और जब उनको ये पता चला कि मेरी जो मृत्यु है वो 3-7 दिनों में होने वाली है, तो राजा परीक्षित ने और किसी चीज और किसी उपाय को नहीं सोचा, बल्कि परीक्षित महाराज इतने प्रभावशाली थे कि वो हाँ, उस श्रृंगी ऋषि के शाप को नष्ट कर सकते थे, उनको फिर से शाप दे सकते थे या तक्षक को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान की इस योजना को स्वीकार किया और उन्होंने तुरंत ही दो चीजों का आश्रय ग्रहण किया। एक था मदर गंगा और दूसरा था वैष्णव। तो ऐसे परीक्षित महाराज अपने सारे राजकारभार आदि को छोड़कर नदी के किनारे गए और उन्होंने वैष्णव के सामने हाथ जोड़ के कहा कि आप क्या करो, गायतः कृष्ण गाथा, आप गाओ, कृष्ण का वर्णन करो, कृष्ण का गुणगान करो, और मुझे भय नहीं है। किस चीज का भय नहीं है मुझे? उस उड़ने वाले तक्षक सर्प का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, मैं तो आपके मुखारविंद से कृष्ण का गुणगान सदैव सुनना चाहता हूं। तो ऐसे परीक्षित महाराज को जैसे ही शुकदेव गोस्वामी सामने मिले हैं, तो शुकदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज ने इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रश्न रखा, और वो प्रश्न वास्तव में हम सबके लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या केवल वो प्रश्न परीक्षित महाराज के लिए नहीं है। उन्होंने वो प्रश्न रखा और उन्होंने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा, कि है शुकदेव गोस्वामी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है, या फिर आप सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम गुरु हैं, तो मेरा यह प्रश्न है कि जो मृत्यु के निकट खड़ा है या मरणासन्न व्यक्ति है, मरने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का इस जगत में क्या कार्य है? कितना सरल प्रश्न है। हम सब वास्तव में ये प्रश्न हम सबके लिए है। राजा परीक्षित महान वैष्णव है, हम उनको इस प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे राजा परीक्षित केवल हम सबके लिए प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहते हैं, क्या कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, कि हे राजा परीक्षित, वास्तव में मरणासन्न व्यक्ति का जो मृत्यु के निकट खड़ा है, और मृत्यु के निकट कौन खड़ा है, केवल वृद्ध व्यक्ति ही नहीं, हम सब मृत्यु के निकट खड़े हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं यहां या अपने घर में सुरक्षित हो, या अपने माता पिता के अंडर सुरक्षित हो, या हॉस्पिटल मेरे पास इतने सारे फैसिलिटी है, डॉक्टर्स हैं, धन है, मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास बहुत सारी फैसिलिटी है, ये मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, लेकिन नहीं, हर एक व्यक्ति इस जगत में हर क्षण मृत्यु के निकट है और मृत्यु निश्चित है। जैसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुनते हैं, जब वो मरने वाला था तो मृत्यु से पहले उसने अपने मंत्रियों को कहा कि आप क्या करो, जैसे मेरे मृत्यु होगी उस समय मुझे जब कंधे में ले जाएंगे चार लोग, तो वो डॉक्टर्स होने चाहिए, वैद्य होने चाहिए, और जब ले जाएंगे जिस रोड पर, उस रोड पर सारे हीरे जवाहरात मोती आदि से वो रोड को सजाओ, और जब फाइनली मुझे दफनाया जाएगा तो मेरे दो हाथों को खुला ऊपर छोड़ो कि देखने दो सबको। अभी ये राजा है, राजा के आदेश का पालन करना उनके मंत्रियों का कर्तव्य है। तो फिर किसी एक मंत्री ने पूछा, किसको करेज नहीं हो रहा था कि पूछ, सब डर रहे थे कि क्यों ऐसा करना है, तो अलेक्जेंडर ग्रेट ने कहा, मंत्री ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सारे जगत को ये शिक्षा प्रदान करना चाहता हूं और इस चीज को दिखाना चाहता हूं कि आपके पास बेस्ट डॉक्टर फैसिलिटी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको बचा नहीं सकते, इसलिए मैं, उन्होंने कहा क्यों डॉक्टर से क्यों जाए, वैद्य, उस समय तो वैद्य कहते थे, वैद्य क्यों ले जाना चाहे, वो क्यों ले जाए आपकी डेथ बॉडी को, क्योंकि जगत को पता होना चाहिए। हम सोचते चलो मेरा इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास ये हॉस्पिटल की सुविधा है, मेरे पास ये धन है, लेकिन डॉक्टर्स भी बचा नहीं सकते, आपके पास बेस्ट फैसिलिटी सुविधा क्यों ना हो, और फिर दूसरे ने पूछा कि क्यों ये सारे हीरे जवाहरात क्यों आपके रास्ते में? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे विश्व को जीता, सारे विश्व का धनाढ्य व्यक्ति बना, सारा धन मेरे पास रहा, लेकिन फिर भी हाँ सबको पता चले कि मुझे ले जाया जा रहा है, लेकिन मैं उसको अपने साथ हाँ नहीं ले जा रहा हूं। असली स्थिति मेरी क्या है कि मैं इस भौतिक जगत में आया हूं। हाँ, वैसे भी हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो नग्न आते हैं, है कि नहीं? एवं कपड़े पहन के भी नहीं आते। हाँ, जाते समय भी हाँ उन्होंने हाथ खुले छोड़ने के लिए कहा था कि मैं कुछ लाया नहीं था, और मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहां से कोई भी एक वस्तु भी मैं ले नहीं जा सकता। तो वास्तव में हम सब मरणासन्न व्यक्ति हैं, इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह भुज्यच नित्यदा। तो इसी कारण से हर एक व्यक्ति जो मरणासन्न है, उसलिए हे राजा परीक्षित, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, सुनना चाहिए। किसके बारे में सुनना चाहिए? हरि, हरि हरि कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। हरि का मतलब ही है पापम दुख चित्तस्य यथायत हरति इति हरि। जो पाप दुख और चित्त का हरण करते हैं वो कौन है? हरि है, कृष्ण है। तो इसी कारण से राजा परीक्षित को उन्होंने कहा कि आप क्या करो? श्रोतव्य, उनके बारे में सुनो। कीर्तितव्य, उनके बारे में गाओ, उनकी महिमा का वर्णन करो, उनका कीर्तन करो, उनके गुणों की चर्चा करो, बोलो। स्मर्तव्य, स्मरण करो। इच्छिता अभयम, हाँ अब अभय निडर रहना चाहते हो। तो इस प्रकार से वास्तव में ये बेस्ट मेडिसिन है और सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। क्या करना? भगवान के बारे में सुनना। युवान जो प्रहलाद महाराज छोटा सा बच्चा था, 5 साल का, बोर्डिंग स्कूल से घर आया, तो उनके पिता ने जब पूछा कि बेटा क्या सबसे अच्छी चीज सीख के आया हो, तो उन्होंने कहा मैंने सबसे अच्छी चीज सीखी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। मैंने सबसे अच्छी चीज कुछ सीखी है तो मैंने यही सीखा है कि भगवान विष्णु या कृष्ण के बारे में श्रवण किया जाए, उनका कीर्तन किया जाए, उनका स्मरण किया जाए। इससे बेस्ट चीज इस जगत में कोई और नहीं है। इसी कारण से परीक्षित महाराज जो श्रीमद् भागवतम को सुनते जा रहे थे, तो सुनते सुनते उन्होंने कहा कि कथयश्च महाभाग, हे महाभाग शुकदेव गोस्वामी, आप क्या करो? सुनाओ कृष्ण कथा, ताकि मेरा मन कृष्ण में लगे और मृत्यु के समय मतलब भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए इस देह का मैं त्याग करूं। यही सिद्धि है। बच्चों को थोड़ा सा प्लीज कोई कंट्रोल करें। तो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप क्या करो? श्रवण कराओ, जिसके द्वारा मृत्यु के समय मैं कृष्ण का स्मरण करते हुए इस देह का त्याग कर पाऊंगा। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने कहा सुनवता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टिता कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। परीक्षित महाराज ने कहा यदि किसी व्यक्ति की ये कामना है कि भगवान को मैं अपने हृदय में कैप्चर करना चाहता हूं, अभी हम टेम्पल दर्शन करने जाते हैं तो आजकल एक इंस्ट्रूमेंट हर एक के पास है, जन्म लेता है तो बच्चे के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, हाँ वो क्या है? मोबाइल। तो जो मोबाइल है हाँ उनमें जाकर हम कृष्ण को उसके द्वारा या कैमरा आदि के द्वारा कृष्ण को कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण को कैप्चर हाँ कहाँ किया जाता है? अपने हृदय में। तो परीक्षित महाराज ने कहा काले न अति दीर्घे न, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप कृष्ण को लॉक्ड ब्लॉक कर सकते हो अपने हृदय में। कैसे? केवल एक कार्य करने से, सुनमता श्रद्धया नित्यम, केवल कृष्ण के बारे में श्रद्धा के साथ हम श्रवण करते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में बन जाते हैं, हाँ और वो फिर छूट नहीं सकते। कृष्ण को बाहर निकलना क्या है? कठिन है। हम सुनते हैं बिल मंगल ठाकुर के बारे में। बिल मंगल ठाकुर साउथ इंडिया के महान वैष्णव थे, जब वो वृंदावन आए उनके पास तो आंखें नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने ब्रज भूमि में प्रवेश किया तो भगवान उनको गाइड कर रहे थे, भगवान उनको गाइड कर रहे थे पर्सनली। कृष्ण के साथ वॉक करना, ब्रज में जाना, उससे बेस्ट गाइड कौन हो सकता है वृंदावन में। तो ऐसे कृष्ण बेलमंगल ठाकुर को लेके ब्रज में भ्रमण कर रहे थे, और फिर जब इनको थोड़ा सा आभास हो रहा था कि ये रोज बालक मुझे ब्रज भूमि का अलग अलग स्थानों में भ्रमण कराता है, तो ये कोई सर्वसामान्य नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि पूछूंगा कौन हो, अपना परिचय बताओ, आइडेंटिटी को बताओ। तो दूसरे दिन बेलमंगल ठाकुर ने उनका हाथ पकड़ा जोर से और कहा कि बताओ आप कौन हो। तो उन्होंने तुरंत अपने हाथ को छोड़ दिया। तो बेलमंगल ठाकुर ने कहा, हाँ मैं समझ गया आप कौन हो, आप मेरे हाथ से छूट सकते हो, लेकिन आप में इतना सामर्थ्य है तो आप मेरे हृदय से छूट कर या बाहर निकल कर देखो। तो कृष्णा उनके भक्तों के हृदय में बंदिश हो जाते हैं। भगवान के लिए जेल कुछ है, जेल है ना, वो क्या है, भक्तों का हृदय है कृष्ण मां। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान को पता है, लोग लंबे लाइन लेकर जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते हैं, धनम देही जनम देही रूपवती भार्याम देही, धन दे दो, धन जन दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, रूपवती भार्या दे दो। हाँ लेकिन जगन्नाथ कहते ले लो भागो यहाँ से। लेकिन कोई कहते हैं भगवान न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवदाद भक्ति आहेतु की त्वयि, आप मुझे केवल अपनी आहेतु की भक्ति दे दो, उसके अलावा कृष्ण आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहते वेटिंग लिस्ट में रखता हूँ, खड़े हो जाओ थोड़ा साइड में। हाँ क्योंकि कृष्ण को सोचना पड़ता है, कृष्ण को पता है भक्ति देने मात्र से हाँ मुझे क्या करना होगा, जेल में एडमिशन लेना पड़ेगा और आजन्म कारावास है कि नहीं। वहां तो फिर भगवान शुद्ध भक्त के हृदय से कभी निकल नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा साधवो हृदयम मह्यम साधना हृदयम तो हम, साधु या वैष्णव या शुद्ध भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में है वैष्णव ठाकुर सर्वदा गोविंद कृष्ण निवास करते हैं। तो वास्तव में हम यहाँ बैठे हैं कृष्ण प्रेमी बनने के लिए, है कि नहीं। क्यों बैठे हैं यहाँ, क्यों बैठे हैं, कृष्ण के प्रेमी बनने के लिए। प्रेमी मीन्स लवर ऑफ कृष्ण, कृष्ण के प्रेमी, हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, बल्कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति नित्य प्रेम है, लेकिन वह भी ढका हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन है श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय हृदय, श्रवण आदि कार्यकलापों के द्वारा हम कृष्ण के प्रति सुप्त प्रीति है उसको जागृत कर सकते हैं। इसलिए ये यज्ञ हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ इसके यज्ञ कुंड होना चाहिए, यज्ञ करना है तो यज्ञ कुंड के बिना कैसे यज्ञ होगा। तो यज्ञ कुंड क्या है, कान है, कितने कान है सबके पास, दो दो कान है। तो यज्ञ कुंड कान है और फिर यज्ञ कुंड है, तो यज्ञ कुंड में तो कुछ गिरना चाहिए ना, आहुति डाली जानी चाहिए। तो आहुति क्या है, कृष्ण कथा है ना, आहुति डाली जाती है। हाँ तो इस प्रकार से ये यज्ञ हम भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए आरंभ कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव और वैष्णव की कृपा से। तो इस यज्ञ की सफलता क्या है कि भगवान कृष्ण के प्रति जगन्नाथ के प्रति सेवा की भावना और उनके प्रति जो रति है प्रेम है प्रीति है वो बढ़नी चाहिए। हाँ ये इसका रिजल्ट है, ये फायर यज्ञ में आहुति डाल रहे हो, कुछ तो निकलेगा, धुआ तो नहीं निकलना चाहिए। धुआ का मतलब है कि कुछ भी सर्विस एटीट्यूड नहीं। तो यज्ञ कुंड से फायर क्या, किस चीज की फायर निकलनी चाहिए, सेवा की भावना और सेवा और कृष्ण कथा को श्रवण करने की लालसा, भगवान के प्रति जो प्रीति है वो बढ़नी चाहिए। हाँ तो इसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज वर्णन करते हैं। तो परीक्षित महाराज हमेशा उत्साहित है भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो ये जो 3 दिन का हमारा सत्र है, तो 3 दिन में हम 3 प्रकार के विषयों पर प्रकाश डालेंगे। तो आज का दिन है जिसमें हम श्रवण करेंगे, अपने से हम पढ़ा होगा बोर्ड में, जगन्नाथ के प्राकट्य लीला, भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो जितना भी ना हो सके सब्जेक्ट या विषय हम कवर करने का प्रयास करेंगे आज, नहीं हुआ तो उसको कल चर्चा करेंगे। और कल हम चर्चा करेंगे भक्त प्रेमी भगवान, भक्तों के प्रति विशेष प्रेम रखने वाले भगवान कौन है, जगन्नाथ या भक्त वत्सल जगन्नाथ। विशेष रूप से कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेशन। हाँ, क्योंकि भगवान कोई मूर्ति नहीं है या कोई पत्थर नहीं है जो बस बैठे हुए हैं। जैसे घर में डॉल होती है बच्चों को खिलौना, आजकल तो मॉडर्न खिलौने आ गए, वो चलते भी हैं, बोलते भी हैं, है कि नहीं। तो भगवान जगन्नाथ क्यों नहीं चलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं रेसिप्रोकेट करेंगे। तो उनका और उनके भक्तों के बीच की जो लीलाएं हैं, उनका प्रेममयी जो सेवा का आदान प्रदान है कई भक्तों का जगन्नाथपुरी में, उसका वर्णन हम श्रवण कर सकते हैं। और आखिरी तीसरे दिन हम भगवान की जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, रथ यात्रा की ग्लोरीज को चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं से या कृष्ण लीलाओं से हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कृष्ण नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, क्यों करते हैं, आनंद लीलामय विग्रहाय। भगवान करते हैं लीलाएं वो केवल अपने भक्तों को या प्रेमी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। दामोदर अष्टकम में वर्णन आता है आनंद कुंडे, कि भगवान आनंद के कुंड में सबको डुबा देते हैं अपने लीलाओं के द्वारा। तो इसी कारण से भगवान जगन्नाथ वास्तव में अपने आचरण से सिखाते हैं। वास्तव में ये उनका रूप बना ही केवल है, केवल एक चीज उन्होंने गलती कर दी, क्या, अटेंटिव हियरिंग। क्या किया, क्लास में बैठे थे और गलती से ध्यानपूर्वक लेक्चर सुना द्वारका में, और उनका रूप ही बदल गया कृष्ण का। ये पावर ऑफ हियरिंग कह सकते हैं आप, है कि नहीं, कि अटेंटिव हियरिंग का क्या रिजल्ट है। तो ऐसे जो जगन्नाथ देव है वो उनका रूप श्रवण करने, कृष्ण का रूप श्रवण करने से ही बदल गया, चका डोला हो गया। तो उड़िया में डिवोटीज कहते हैं भगवान को चका डोला, चका मीन्स चक्का, व्हील, गोल गोल आंखें हैं, है कि नहीं। कैसी आंखें जगन्नाथ की, गोल गोल आंखें हैं। तो ऐसे जगन्नाथ की ये जो दशा है ये केवल श्रवण करने से हुई। और क्या श्रवण किया उन्होंने, ब्रज लीला कहानी, वृंदावन की जो लीलाज हैं, उनके भक्तों के बीच में जो उनके साथ आदान प्रदान की लीलाएं हैं उनको भगवान ने सुना द्वारका में। द्वारका में सुनने मात्र से ये विशेष जो बदलाव है भगवान कृष्ण में हमें पाया जाता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ नित्य रूप में अपने धाम में निवास करते हैं, क्योंकि किसी भी स्थान को आप जानना चाहते हैं, किसी भी स्थान में आप यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं, चाहे वो तीर्थ स्थान है या धाम है, तो आपको 3 चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। वो 3 चीजें क्या है, शास्त्र कहते हैं वो 3 चीजें हैं, एक तो धाम, दूसरा है धामी और तीसरा है धामवासी। तो इन 3 चीजों को जाने बगैर आप किसी स्थान को नहीं समझ सकते। आप वृंदावन जाते हो या फिर किसी जगन्नाथपुरी जाते हो, द्वारका जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, जहां मर्जी जाते हो, लेकिन वहां जाकर यदि इन 3 चीजों को सर्च नहीं करते, 3 चीजों को समझते नहीं है, तो आपने वास्तव में उस स्थान को विजिट नहीं किया है, उस स्थान की यात्रा नहीं की है, क्योंकि वो स्थान इसलिए भगवान भगवद गीता में बारंबार इस चीज का वर्णन करते हैं न तद्वासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वान निवर्तन्ते तद् धाम परम मम। मेरा धाम कैसा है अर्जुन, किस प्रकार का है? कि मेरा धाम तो ना वहां सूर्य ना चंद्रमा आदि की आवश्यकता है, वो स्वयं प्रकाशित है। भगवत धाम वैकुंठ गोलक वृंदावन जगन्नाथपुरी आदि जो धाम है, और वहां के जो धामी हैं जैसे देह है और देही, देह के अंदर निवास करने वाला वो कौन है? आत्मा। तो उसी प्रकार से धाम है और धाम के अंदर जो अधिष्ठात्रा देव है, पर्सनैलिटी है, वो कौन है? भगवान है। जगन्नाथपुरी धाम है तो वहां के धामी कौन है? कौन होंगे? लॉर्ड जगन्नाथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में धाम की कई स्थानों में धाम का वर्णन करते हैं, और धाम का मतलब है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, धाम इज वेयर कृष्णा रिजाइड्स। धाम का मतलब है कि जहां भगवान निवास करते हैं, दैट इज कॉल्ड धाम, निज निज ग्रह। कोई राजा होता है तो उसका किंगडम भी है, लेकिन उसके साथ साथ उनका अपना महल भी है। तो उसी प्रकार से भगवान निवास करते हैं तो उनका ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत भी है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं सारे जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगतों का कारण मुझसे ही प्रकट होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, ये मुझसे प्रकट होता है। तो ऐसा उसी प्रकार से भगवान का ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत है, लेकिन भगवान का अपना निजी ग्रह भी है, तो उस स्थान को धाम कहा जाता है। सर्वग अनंत विभो वैकुंठादि धाम कृष्ण कृष्ण अवतारे तहा हि विश्राम। तो अनंत धाम है वैकुंठादि, कृष्ण और कृष्ण के जितने भी अवतार हैं तो उन धामों में निवास करते हैं। तो ऐसा धाम भगवान क्या करते हैं, अपने धाम को आध्यात्मिक जगत से इस जगत में लेकर आते हैं। ब्रह्मांडे प्रकाशतार कृष्ण रहिछाय एक स्वरूप तारा नाही द्विकाय। किस ब्रह्मांड में आध्यात्मिक जगत से धाम को ले आते हैं कृष्ण की इच्छा से, इसलिए वो धाम ये जगत में ब्रज भूमि है, वृंदावन है या फिर जगन्नाथपुरी है, तो वो आध्यात्मिक जगत के स्थान से अभिन्न है। तो भारतवर्ष में जनरली लोग चार धाम सोचते हैं, कौन कौन से वो चार धाम? बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं, हाँ चार धाम है, जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ द्वारका और रामेश्वरम, जहां चार नाथ निवास करते हैं। चार नाथ कौन है? जगन्नाथ, रामनाथ और बद्रीनाथ और द्वारकानाथ। तो ऐसे चारों धामों में भगवान प्रमुख रूप में निवास करते हैं। तो आज हम विशेष रूप से जगन्नाथपुरी जो धाम है उसके बारे में वर्णन करेंगे, धाम और धामी दोनों के बारे में। तो भगवान जगन्नाथ, उनके अनंत नाम है, और ये नाम जगन्नाथ का मतलब है जो जगत के नाथ है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका से अपने शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो फॉरेनर्स डिसाइपल है, विदेशी जो भक्त है, उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो प्रभुपाद ने कहा, ये जो जगन्नाथ है ये केवल उड़िया नाथ नहीं है, आप उड़िया गण हो, आपको लगता है कि हमारे नाग उड़िया नाथ है, या ये जगन्नाथ कोई पंडा नाथ नहीं है, हाँ ये कौन से नाथ है? जगन्नाथ। आपने उनको लिमिटेड कर दिया है, क्या वो ओडिशा से बाहर नहीं जा सकते, बाकियों के नाथ नहीं हो सकते, क्या वो उड़िया के अलावा या फिर पंडों के अलावा किसकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते? प्रभुपाद ने कहा, जगन्नाथ है, उनको आप लिमिटेड मत करो, क्योंकि वो अनलिमिटेड पर्सनालिटी है, वो अनंत है, तो इसलिए वो जगत के नाथ है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने धाम जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, और आप जगन्नाथपुरी गए होंगे तो आप वहां एक चीज का अनुभव करोगे कि वहां हर चीज जगन्नाथ का स्मरण कराती है, क्योंकि जगन्नाथ गोल मटोल है, लेकिन उनकी आंखें गोल गोल है, तो ओडिशा में जाओगे तो वहां के बल्ब भी गोल गोल है। और उतना ही नहीं, उनकी आंखें या फिर वहां के लैंग्वेज जो उड़िया भाषा है वो भी कैसी है, सारे जगन्नाथ की आंखों के जैसी गोल गोल नजर आती है। इसलिए वहां के जो ट्रक्स है, मैं ट्रक्स वगैरह को देख रहा था जब गया था, तो देखा कि उसके ऊपर भी आगे ट्रक्स के बड़े बड़े गोल ये लिखा है, गोल गोल आंखें बनाए हैं, चका डोला। तो मतलब आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल सकते, और दिल्ली में आप उनको याद करना चाहेंगे तो भी याद नहीं कर सकते। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी भगवान कृष्ण की स्मरण देने वाली भूमि है। और वास्तव में हमारे जीवन में सबसे बड़ा लॉस कुछ है तो वो है भगवान कृष्ण का विस्मरण होना। भक्त सोचता है कि मेरे जीवन में लॉस है वो कि जिस समय में कृष्ण को भूल गया हूं, उनका विस्मरण हो गया है। गेन क्या है? कृष्ण का स्मरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लाउडली लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जगन्नाथ का जो धाम है वो इस भक्ति जगत से परे है। जनरली हम धाम में जाते हैं तो वहां का कर्ण भेद करने वाला पिंग पोंग जो गाड़ियों की आवाज है वो सुनते परेशान होते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, भगवान का स्मरण कई बार हमें कम हो जाता है। तो लेकिन ऐसे धाम को देखने के लिए भी हम योग्यता चाहिए। चर्म चक्ष देखे तार प्रपंच रसम, जो व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है, टेम्पल जाता है और वहां जाकर अपनी चमड़े की आंखों का इस्तेमाल करता है आध्यात्मिक स्थान या वस्तु को देखने के लिए, वो कभी भी देख नहीं सकता। विमुड़ा नाम पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति नहीं देख सकता, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वास्तव में व्यक्ति देखता है। जो इंद्र थे, इंद्र को कितनी आंखें हैं? 1000, सहस्राक्ष उनका एक नाम है, सहस्र नेत्र एक नाम है, लेकिन इतनी आंखें होने के बावजूद भी वो गलत सिद्ध कृष्ण को वो समझ नहीं पाए। देखते हुए भी उनको ब्रज में कृष्ण ठीक से दिखाई नहीं दिए, उन्होंने उनके प्रति अपराध किया और क्या किया, वर्षा करा के भगवान को गोवर्धन धारण करना पड़ा। फिर तब उनको दिमाग के दाने में आया, तब दिखाई दिया भगवान ने जब अद्भुत लीला की। तो उसी प्रकार से धाम को आप भौतिक चक्षुओं से नहीं देख सकते, तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय विलोकयन्ति, जो संतगण है वो अपने हृदय में यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर रूप कृष्ण को सदैव देखते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम रूपी अंजन अपने आंखों में लगाया है। कौन सा अंजन? प्रेम रूपी, माता ही लगाती है ना ब्लैक अंजन, तो वो मार्केट से ले आती है बेचारे। लेकिन कृष्ण को देखने के लिए वो सहायता नहीं करेगा, कृष्ण को देखने के लिए एक फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, स्पेशल फैक्ट्री है और वो प्रोडक्ट के ओनर कौन है? शुद्ध भक्त श्री गुरुदेव, उनके फैक्ट्री में वो अंजन प्रकट होता है। इसलिए हम गाते ना ज्ञान अंजन शलाके, इधर उधर का अंजन काम नहीं करेगा, वो तो काला अंजन से और कृष्ण काले नजर आएंगे। तो ये फैक्ट्री या ये अंजन प्रकट होता है भगवान के शुद्ध भक्तों के पास है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं अपने आंखों को वो दिव्य प्रेमांजन लगाते हैं और जिसके द्वारा कृष्ण को देखने की योग्यता हमारे अंदर आती है। तो ऐसे भगवान कृष्ण व्यासदेव के रूप में शक्तावेश अवतार धारण करते हैं और कई पुराणों का कंपाइल करते हैं, संकलन करते हैं ऐसे व्यासदेव। पुराण का मतलब है पुरापि नवम पुराणम, पुराना होकर भी जो नव नवायमान रहता है, हमेशा न्यू फ्रेश रहता है, उसको क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। तो ऐसे व्यासदेव ने 18 पुराणों की रचना की और उसमें से एक सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में है, ये स्कंद पुराण सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को बोला था, ब्रह्मा जी सुन रहे थे। हाँ उस समय तो देखो एक एक व्यक्ति श्रोता होता था, एक ही वक्त था, आज तो कितनी फैसिलिटी है, एक बोल रहा है तो कितने लोग सुनने के लिए है कि नहीं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू होता था कृष्ण कथा। ऐसे नहीं कि वक्ता नहीं, आज अभी 10 ही लोग आए हैं कैसे बोलो, वहां तो केवल नारायण बोल रहे थे और सुनने के लिए कौन है, ब्रह्मा। और कई बार शिव जी दिन रात लेक्चर देते हैं, कोई श्रोता नहीं होता सामने, एक ही होता है घर का श्रोता, उनकी पत्नी है कि नहीं, जनरली पत्नी सुनती नहीं है, सुनाती है कि नहीं। लेकिन यहां शिव जी बोल रहे हैं और पार्वती अटेंटिवली श्रवण कर रही है। पार्वती को दूसरी कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, बताओ बताओ शिव जी हो, क्या बताइए, सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछती है, कौन पूछ सकता है ऐसे प्रश्न, नहीं। तो शिव जी कहते आराधना ना सर्वेशा विष्णु आराधनम परम, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, तो विष्णु की है, और उनसे परतरम देवी समर्चनम तदीयानाम समर्चनम, उनसे भी बढ़कर आराधना है भगवान के जो भक्त है। इस प्रकार से ब्रह्मा तो नारायण इस पुराण का नॉलेज देते हैं और ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं, और शिव जी स्कंद उनके जो पुत्र है, कार्तिकेय का नाम स्कंद है ना, तो स्कंद को सुनाते हैं। आइडियल फैमिली है, कभी कभी मैं इनके बारे में सोचता हूँ, शिव जी के बारे में, गणेश जी के बारे में, पार्वती है, कार्तिकीय है, ये पूरा टीम केवल कृष्ण कथा में लगा रहता है। हाँ कृष्ण नाम, अरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब ये पुराण स्कंद ने सुना और स्कंद ने आगे ये जैमिनी ऋषि को सुनाया, तो जैमिनी ऋषि ने एक दिन मंदराचल पर्वत पर बहुत सारे ऋषि बैठे थे, उनको एक लेक्चर दिया, क्योंकि वो सारे ऋषि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि हे जैमिनी ऋषि आप बताओ कि ये जो नीलाचल धाम है, जगन्नाथपुरी है, श्री क्षेत्र है, शंख क्षेत्र कहा जाता है उसे, ये जो स्थान है वहां भगवान दारु ब्रह्म के रूप में क्यों है, और क्यों नरवर एक मनुष्य के समान अपने लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो जैमिनी ऋषि ने कहा श्रुणुध्वमनया सर्वे रहस्यं परमं हितं, उन्होंने कहा हे मुनिगण ये जो जगन्नाथपुरी है ना, ये तो बहुत रहस्य से भरा पड़ा है, और वैसे भी कोई टेम्पल में आता होगा नया व्यक्ति है कि नहीं, उनके लिए जगन्नाथ को देखना तो बड़ा रहस्यमय है, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने भगवान जगन्नाथ को शायद पहली बार 98 में देखा था, नया नया इस्कॉन की रथ यात्रा की थी मुंबई में शुरू में, पहले तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था जगन्नाथ जी कौन है, और देखना तो दूर, जब देखा तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो फिर धीरे धीरे भक्तों के संग में समझ में आने लगा। तो भगवान जगन्नाथ का धाम रहस्यों से भरा पड़ा है, और उनसे आगे भगवान जगन्नाथ स्वयं ही रहस्यमय है, लेकिन भगवान कहते सर्व सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता, गीता में कहते कौन समझ सकता है, भक्तों से में सखा चेति रहस्यम एतदुत्तम, कि केवल मेरा जो भक्त है वही इस दिव्य रहस्य को समझने का सामर्थ्य रखता है और कोई नहीं। इस प्रकार से भगवान के जो धाम है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हर युग का एक धाम है, हर युग का मंत्र है, हर युग के डीटीज हैं, मुद्राएं हैं, जिनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जो कलयुग का नाम है या मंत्र है वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, सारे वेद उपनिषद इसकी गवेषणा करते हैं, वर्णन करते हैं, और कलियुग का धाम है श्रीधाम मायापुर, और कलियुग के विग्रह कौन से हैं? जगन्नाथ देव की। कलियुग के ऑथेंटिक ऑफिशियली जो डीटीज हैं वो जगन्नाथ देव है। सत्ययुग के श्रीरंगम में रंगनाथ, वो सत्ययुग के विग्रह हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ ये दिव्य लीलाएं करते हैं, और उनको समझने के लिए व्यक्ति वास्तव में भगवान का जो भक्त है वो होना आवश्यक है। तो जो जयमनि ऋषि हैं वो मुनि सारे ऋषियों को बता रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति केवल इच्छा करता है जगन्नाथपुरी जाने की, उस इच्छा मात्र से उसके अनगिनत पापों का क्षय हो जाता है। और क्यों? क्योंकि वहां वो इतना पवित्र भूमि है जगन्नाथपुरी कि वहां आने वाला जो जीव है वो निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ की चरणों की प्राप्ति करता है। क्योंकि जब ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया कि आप इस भौतिक जगत की सृष्टि करो, तो ब्रह्मा ने सृष्टि की श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में वर्णन आता है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि की और इतना कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि की, अलग अलग शरीर बनाए, ब्रह्मांड बनाया, कि बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई, और उन्होंने सोचा कि जो भी जीव इस जगत में आएगा, इस ब्रह्मांड में आएगा, वो कष्ट और यातना के अलावा कुछ नहीं प्राप्त करने वाला है। ये जगत में हम आते हैं और कितनी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? लेकिन ब्रह्मा ने सोचा कि जो भी इस जगत में आएगा, पहले रहेगा, उसको केवल यातनाएं, विपदाएं, कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिता, इनके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ब्रह्मा बहुत दुखी हो गए थे। तो ब्रह्मा ने श्रीमद् भागवतम में प्रार्थना की भगवान कृष्ण को, उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि जो भी जगत में आएगा और वो फंसेगा, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि क्या सेवा आपने मुझसे करवाई, मुझे आपने सेवा में लगा दिया, और ऐसी सेवा कि दूसरे जीव जो भी संसार में आएगा वो कष्ट ही कष्ट पाएगा और जीवन भर रोते रहेगा। रोते कि नहीं? हम दो चीजें हैं, या तो कृष्ण के लिए रो, या तो फिर माया के लिए रो, भौतिक जगत में रोते रहो। भगवान कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, पहले अंदर ही रोते रहते हैं, है कि नहीं? भगवान प्लीज मुझे निकालो, इस विपदा से बाहर निकालो, बहुत कष्ट हो रहा है। तो ठीक है, बाहर निकलता है, रोते हुए आता है, बाकी सब हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, बेचारा रो रहा है, इतनी चीजें हो रही है। और रोते हुए आ रहा है, यदि बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, यदि रोए नहीं तो डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। डॉक्टर कह, फिर डॉक्टर को क्या करते हैं? पिंच करते हैं, रुलाते हैं, अभी नॉर्मल है, क्योंकि वो बताना चाहता है डॉक्टर भी, उसको शायद पता नहीं होगा फिलोसफी, डॉक्टर ये बताना चाहते हैं कि हाँ भौतिक जगत में आना जैसे रोना। फिर बड़ा होता है कि नहीं, बचपन से पूरा स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में, जॉब करने में, शादी करने में, सब कुछ करने में रोता ही रहता है। अभी जो मृत्यु आता है, मृत्यु के समय में हंसता थोड़ी कोई व्यक्ति, क्या करता है? रोता है। मतलब आना भी रोते हुए, जीना भी रोते हुए, और मरना भी रोते हुए। तो लेकिन वास्तव में रोना है हमें कृष्ण के लिए रोना है। यदि कृष्ण के लिए रोना नहीं सीखेंगे तो इस प्रकार से जीवन भर हम रोते रहेंगे, क्योंकि रोने की टेंडेंसी हमारे अंदर है, जैसे वो निकाली नहीं जा सकती। जैसे मिर्च के अंदर कौन सी टेंडेंसी? तीखापन। शुगर के अंदर क्या है? मीठापन। तो वैसे हम जीव हैं, हमारे अंदर है सेवा की भावना, लेकिन साथ साथ ये भी है, क्या है? रोना। हम भक्ति का मतलब यही है, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति योग है केवल क्रंदन। भक्ति योग क्या है? केवल रोना है कृष्ण के लिए, और वो इतना सरल नहीं है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा है वो बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर जादेव जातो हम विश्व सृष्टि कृत, आपने तो मुझे इतनी बड़ी सेवाएं लगाई, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ जगत के आधार शंख चक्र गदा धारण करने वाले हैं कृष्णा। ऐसी बहुत प्रार्थना की, स्तुतिया की, तो भगवान प्रकट हुए गरुड़ के ऊपर। उन्होंने कहा एक स्थान है, हे ब्रह्मा एक चीज है, तुमने तो ये सब कुछ बनाया है लेकिन एक स्थान ऐसा है जो तुम्हारे सृष्टि के अंदर नहीं आता, तुम्हारे कंट्रोल के अंदर, तुम्हारे स्वामित्व के अंदर नहीं आता। वो स्थान क्या है? भगवान ने कहा सागर उत्तरे तीरे महानद्यास्तु दक्षिणे सब प्रदेश पृथ्वी सर्व तीर्थ फल प्रधान। सागर के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर और महानदी के दक्षिण के तट पर एक विशेष प्रदेश है, विशेष स्थान है, नीलाचल उसका नाम है, जगन्नाथपुरी। और यहाँ जो निवास करने वाले हैं वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं, और जो भी व्यक्ति इस स्थान के संपर्क में आता है वो जरूर इस भौतिक जगत के बंधन से, कष्टों से मुक्त हो जाता है और सृष्टि और स्थान का जो प्रभाव है इस स्थान पर नहीं पड़ता। हम भगवान ने कहा कि ये बहुत गोपनीय स्थान है, इवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा मेरा दाम जगन्नाथपुरी। हाँ, पृथ्व्यां गोपितं स्थानं तव चापि सुदुर्लभम्, सर्वसंग परित्यक्त तत्र तिष्ठामि देहावृत। भगवान कहते हैं कृष्ण हे ब्रह्मा मैं सब चीजों का संग त्याग करता हूँ और वहां जाकर निवास करता हूँ जगन्नाथपुरी में। तो जो ब्रह्मा ने कहा सुना तो ब्रह्मा उस स्थान में जाते हैं और भगवान वहां नील माधव के रूप में निवास कर रहे थे और उस स्थान में जाकर उनकी प्रार्थना करते हैं। भगवान जो नील माधव है चतुर्भुज रूप में जिनके साथ लक्ष्मी देवी खड़ी थी, वह उनको प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं। उसी समय यमराज भी वहां पहुंचते हैं ब्रह्मा के साथ उस जगन्नाथपुरी के उस स्थान में। तो इन दोनों ने देखा कि उस मंदिर के या उस विग्रह के नजदीक ही, क्योंकि वो जो विग्रह है नील माधव भगवान कृष्ण और लक्ष्मी देवी हैं, वो एक बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे खड़े हुए थे और उनके पास ही एक सरोवर था जिसमें दोनों ने देखा कि उस सरोवर में एक कौवा गिरता है, गिरने मात्र से चतुर्भुज रूप धारण करता है वैकुंठवासी का और वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। तो ये देखकर यमराज कहता है कि इतना सरल है वैकुंठ जाना, इस जल का स्पर्श करने मात्र से चतुर्भुज रूप धारण करके आध्यात्मिक जगत जाता है तो फिर मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे पास सेवा ही क्या बचेगी, निम्न योनि में जन्म लेने वाले भी यदि वैकुंठ को प्राप्त हो रहे हैं इतनी सरलता से, जो वहां रोहिणी कुंड है उसके जल का स्पर्श करने मात्र से, तो मैं तो खाली हो गया। तो उन्होंने कहा आप बताओ, कुछ बताओ क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मी की ओर भगवान दृष्टिपात करते हैं और वो कहते हैं कि लक्ष्मी तुम जरा बताओ। तो फिर लक्ष्मी देवी बहुत अधिक वर्णन करती हैं जो जगन्नाथपुरी है उस धाम का और उनको कहती हैं कि हे यमराज, इवन ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण आदि आपके अधिकार से रहित ये स्थान है, क्योंकि यहां आने मात्र से, इस जगन्नाथपुरी की भूमि का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति के जो पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्म है जिनके कारण वो कष्ट प्राप्त कर रहा है वो तुरंत जलने लगते हैं, जिस प्रकार से कॉटन आग के संपर्क में आने से तुरंत जल जाता है उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी की भूमि का स्पर्श करता है तुरंत ही उसके पूर्व संचित पाप आदि खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी देवी कहती हैं कि ये जो जगन्नाथपुरी स्थान है इवन इस ब्रह्मांड का सहार हो जाए, प्रलय हो जाए, फिर भी ये जो दिव्य धाम है उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन्होंने इनकी जिज्ञासा और बढ़ गई यमराज की, यमराज ने कहा प्लीज और नरेट करो जरा डिटेल, गो इन डिटेल, हम कैसे सुनना चाहते हैं, डिटेल में सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज भी बहुत एक्सपर्ट श्रोता थे, शुक्रदेव गोस्वामी कभी कभी श्रोता को पहचानने के लिए कितना अटेंटिव है, कितना ईगर है, थोड़ा सा शॉर्टकट मारते थे भागवत में। तो परीक्षित महाराज कहते नहीं डिटेल में जाइए जरा, मैं उस पार्ट को भी सुनना चाहता हूँ जब स्किप कर रहे हैं हम, फिर कहते थे कि हाँ परीक्षा अटेंटिव सुन रहा है। तो ऐसे जो यमराज है वो अटेंटिव सुन रहे थे लक्ष्मी के मुख से ये लेक्चर। तो लक्ष्मी को कहा कि आप जरा डिटेल में बताइए, इनको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो लक्ष्मी ने कहा कि ये धाम निरंतर बने रहता है जगन्नाथपुरी, इवन संहार या प्रलय के समय भी। उन्होंने कहा कि ये भक्त थे, मुनि थे या ऋषि थे, मार्कंडेय ने तपस्या की, उनको जीवन मिला 7 कल्पों का। 7 कल्पों का मतलब है ब्रह्मा के 7 दिन जीवन, ब्रह्मा का 7 दिन, 1000 चतुर्युग, 1000 बार ये सत्ययुग त्रेता द्वापर और कली आता है, 1000 बार तो उनका एक दिन बनता है, उतनी बड़ी रात्र होती है। तो ऐसे इतना बड़ा जीवन ये मार्कंडेय ऋषि को मिला था, हमें मिला तो हम क्या करेंगे सोचेंगे। हाँ, क्योंकि मार्कंडेय मुनि को जैसे ही इतना लंबी आयु मिली तो मार्कंडेय मुनि ने कुछ किया नहीं। मार्कंडेय मुनि ने एक कुटिया बनाई, कुटिया बनाकर क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मार्कंडेय मुनि का इतना लंबा जीवन हुआ। तो जब ब्रह्मा की जब रात्र होती है तो प्रलय होता है, उस प्रलय में जनलोक तक कई लोग खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जब दिन शुरू होता है ब्रह्मा का तो फिर से उनको क्रिएशन करनी पड़ती है, मतलब रोज उनके पास सेवा है, बिना सेवा के ब्रह्मा रहते नहीं, भगवान ने दी हुई सेवा। तो हमें भी भगवत रोज बिना भगवत सेवा के नहीं रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ सेवा को पकड़ना है। भक्त की पहचान क्या है, जो सेवा से चिपका हुआ है ना, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं, ऐसे नहीं, वो छूट सकता है। लेकिन भक्त यदि सिंसियरली भगवत सेवा से चिपक गया तो अपने आखिरी सांस तक वो छूटता नहीं है। सेवा का जो ये है भावना है या सेवा की जो क्या कहते हैं नशा है भगवत सेवा की। तो ऐसे मार्कंडेय मुनि को इतना लंबा आयु मिला ब्रह्मा के 7 दिनों तक। तो फिर जब प्रलय हुआ तो ये मार्कंडेय मुनि प्रलय के जल में कभी गोते लगा रहे, कभी नीचे जा रहे, मूर्छित हो रहे, कब बहते जा रहे हैं, परेशान हो गए। उन्होंने कहा टेंशन है, लंबी आयु होना भी क्या है, परेशानी का काम है। अभी कुछ लोग कहते हैं ना लंबी आयु होनी चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति 100 साल से अधिक जीता है तो उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और अमेरिकन वो यदि वो व्यक्ति है तो वहां का प्रेसिडेंट उनको मिलता है और एक फूल गिफ्ट करता है, उसका सफल है जीवन में, ऐसा सोचता है। हाँ, तो ये क्या है। तो लेकिन इनके पास इतना लंबा आयु था और ये परेशान हो रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, ऐसा बहते 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 वो पहुंच गए, इतना दूर पहुंचे कि उनको एक द्वीप दिखाई दिया। और द्वीप उन्होंने देखा तो द्वीप में क्या था, एक बहुत विशाल वट वृक्ष था। और उस वट वृक्ष को देखकर इन्होंने कहा यही वो स्थान है जहां मैं थोड़ा सा रुक सकता हूं। पूरा जल से सारा पृथ्वी के कई सारे लोग जलमग्न हो गए, एक स्थान जलमग्न नहीं हुआ है। तो वो द्वीप के पास गए तो देख रहे उस तरफ, देखा कि वट वृक्ष है, लेकिन वट वृक्ष के एक पत्ते पर उन्होंने देखा, क्या देखा, वटश्च पत्रश्च मुखमश्च यानि, जो वट का जो पत्ता था उसके ऊपर बाल मुकुंद कृष्ण उस पर लेटे हुए थे। और लेटे हुए उन्होंने इतना ही नहीं देखा और डिटेल में चले गए, है कि नहीं। जैसे आप कुत्ते को देखते हो क्या, डिटेल में देखते हो क्या, नहीं। लेकिन जब आप मंदिर आते हो भगवान को देखते तो कैसे देखते हो, इन डिटेल, भगवान ने कौन सा टर्बन पहना है, कलर्स क्या है, कौन से गहने पहने हैं, आज कौन से फूलों की माला है, कितने प्रकार के फूल है, क्या कलर्स हैं, उनके चरणों में नूपुर कैसे धारण किए, हाथों में बाजूबंद कैसे हैं, तिलक कैसा है, बांसुरी किस प्रकार से रखी गई है, तो इस प्रकार से देखते हैं, इसी को कहते हैं दर्शन। अन्यथा देखना भगवान को वैसे नहीं देखना जैसे आप रोड में चलते चलते किसी कुत्ते को देख लिया, वैसे नहीं। मंदिर आते तो क्या निहारना, जितना अधिक भगवान को आप निहारते हो उनके अलग अलग अंगों का स्मरण करते हो इन डिटेल, उतना ही अधिक कृष्ण आपके मन में हृदय में निवास करने लगते हैं और उतनी मात्रा में आप शुद्ध होने लगते हो। तो फिर इन्होंने मार्कंडेय ऋषि तो पानी के ऊपर बेचारे तैर रहे थे, परेशान थे, भूखे थे, खाने के लिए कुछ नहीं है, मछलियां इधर उधर घूम रही थी, मछलियां भी मरी होगी, डिवोटी है मछली नहीं खा सकते। लेकिन उन्होंने सामने देखा कि कृष्ण एक बच्चा छोटा सा बालक वट वृक्ष के पत्ते पर लेटा हुआ है, और लेकिन और थोड़ा देखा उन्होंने, क्या देखा कि उनका जो दाहिने पांव का अंगूठा है उस बालक ने अपने मुंह में डाला हुआ है। तो आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है। वैसे ही और बच्चा उनकी ओर देखकर हंस रहा है मंद मंद मुस्कान, ये मार्कंडेय ऋषि भी हंस रहे थे। तो वास्तव में भगवान कृष्ण वहां लेटे हुए थे और भगवान क्यों अपना अंगूठा चूस रहे थे, हाँ क्यों चूस रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक लेक्चर सुना था। आप देखिए लेक्चर के अंदर कितने लेक्चर्स हैं, है ना। कहां सुना था उन्होंने, द्वारका में, किससे, अपनी पत्नी रुक्मिणी से। रुक्मिणी देवी ने देखा कि एक दिन ये जो कृष्ण है सुधर्मा सभा भवन से आए हैं, और उन्होंने जब वो आए बहुत थके हुए थे, आते उनको बड़ा सा व्यासासन तो नहीं सिंहासन में बिठाया या पलंग में बिठाया होगा। रुक्मिणी देवी ने उनके चरण पकड़े और चरण पकड़ कर उनके चरण को मसाज करने लगे, थके हुए थे कृष्ण। फिर रुक्मिणी देवी ने आप हर बार तो ऐसा सेवा करते, लेकिन आज जब ये सेवा कर रही थी तो रुक्मिणी देवी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, रोते जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, ओ रुक्मिणी क्या हुआ, तुम आज अचानक इतना क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा, आप नहीं समझ सकते, है कि नहीं, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करके जो आपके भक्तों को आनंद मिलता है उस आनंद की अनुभूति आपको कदापि नहीं हो सकती। उसके लिए आपको क्या करना होगा, भक्त बनना पड़ेगा। आपको पता है श्रीमती राधिका का आपके चरणों के प्रति सेवा का इतना गहरा अनुराग, प्रगाढ़ निष्ठा है, और वो इतना अधिक आनंद अनुभव करती हैं आपके चरणों की सेवा करने से, वो आनंद आपको कभी भी अनुभव नहीं हो सकता। अभी जो चीनी है, चीनी शुगर, वो आपने स्वीटनेस का अनुभव कर सकती है क्या, नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान यदि सर्वज्ञ है, सब चीजों के ज्ञाता है, लेकिन फिर भी वो अज्ञान में है। क्या उनका अज्ञान है, उनके भक्तों को उनकी सेवा करने से जो आनंद मिलता है वो आनंद भगवान कृष्ण को ज्ञात नहीं है। इसीलिए भगवान ने सोचा, सही है, आज कुछ पहले बार इसमें लेक्चर सुन रहा हूं, आज कुछ अटेंटिव हियरिंग हो रहा है, और वो किससे, पत्नी से। हाँ भाई, हम शिव जी की बात कर रहे थे ना, शिव जी किनको सुनाते थे, पार्वती को भी, आज कृष्ण रुक्मिणी से सुन रहे हैं, और वो भी जो उनके दिमाग की खिड़कियां खोलने वाले हैं, ऐसा भगवान कृष्ण ने कभी सुना ही नहीं था। फिर भगवान सोचने लगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान ने सोचा, सही है, फिर भगवान को नींद नहीं आई, सोचने लगे, हाँ इसलिए है, कई सारे भक्तों को देखता हूँ वो घर दार सब कुछ छोड़ के मेरे चरणों में लटक के रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, अभी मुझे समझ में आ रहा है कुछ तो होगा। चरण में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके कारण महान ऋषि मुनि धनाढ्य जीव भौतिक जगत का सारे ऐश्वर्य को त्यागते हैं और मेरे चरणों की सेवा की आकांक्षा रखते हैं, बस वहां लगे रहते हैं। अभी हनुमान जी हैं, हनुमान जी कहां बैठते हैं, है ना, चरणों में। इसलिए भागवत कहता है, भक्तों का स्थान सारंगाना पदांबुजम, भगवान के भक्तों का स्थान भगवान के चरण कमलों में है। तो ऐसा जब रुक्मिणी से उन्होंने सुना तो भगवान को बहुत सोचना पड़ा, और सोचकर उन्होंने कहा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, केवल सुनना इनफ नहीं है, सुने प्रसाद पाए, हो गया, बहुत अच्छा था। कथा कैसे थी? बहुत अच्छे थे, प्रशक्त उससे और अधिक अच्छा था। और किसी को पूछा कि क्या सीखा, क्या समझा बताइए, नहीं सब कुछ अच्छा था, इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। तो भगवान, और उसके बाद असली लेक्चर तो तब शुरू होता है जब हम क्या करते हैं, जीवन में अप्लाई करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने केवल सुनाए नहीं, उन्होंने सोचा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कई बार हम डरते हैं ना सबके सामने अप्लाई करने में, तो भगवान भी अकेले अप्लाई कर रहे थे। वो भी क्या हो गया था, सारा जलमग्न हो गया था सब कुछ, और वहां भगवान अकेले चूसते जा रहे, अपने पाव का अंगूठा चूसते जा रहे, सोचे क्या डिवाइन रस, क्या रस निकल रहा है, देखता हूं कितना स्वीटनेस है, कितनी मधुरता है। तभी भगवान को ही पता कितनी उनको अनुभव हुई। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवत चरणों उनकी सेवा में बहुत प्रगा, बहुत अधिक माधुर्य है, मधुरता है, स्वीटनेस है, आनंद है। तो फिर जब ये अपना उनका सेवा चल ही रहा था, और बीच बीच में देख रहे थे, किनको देख रहे थे, मार्कंडेय ऋषि को देखते देखते मार्कंडेय ऋषि के मुख को देखा कि मुख शिथिल हो गया है, दुखी है बेचारा, लंबा आयु तो ले लिया, जल में गोते लगा रहा है। फिर भगवान ने कहा, अभी आपको बताता हूँ, भगवान ने कहा कि लंबे सांस ले, सांस लीजिए आपसे। हाँ, तो भगवान ने लंबे सांस ली, और भगवान ने सांस ली तो सांस के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि भी उनके अंदर चले गए, अभी बाहर गोते लगा रहे थे अभी भगवान के अंदर। तो अंदर जाते तो क्या देखते, भगवान कहते सारा जगत मुझ में समाया हुआ है अर्जुन। हाँ, भगवान सबके उत्पत्ति के स्रोत है। तो अंदर उन्होंने देखा कि अंदर भी वही, उन्होंने बहुत चीजें देखी। एक तो उन जो रिवर था जिसके किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी, उस कुटिया भी नजर आई, वो रिवर भी नजर आई, फिर प्रलय भी हुआ, फिर अंदर भी गोते लगाने लगे और परेशान हो गए। तो भगवान ने सांस निकाला और अंदर एक द्वीप भी देखा, और वहां वट वृक्ष भी देखा, और वहां वो बालक फिर से दिखाई दिया। और फिर अभी ये जो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि ने देखा ये क्या हो रहा है। तो भगवान ने जैसे ही सांस बाहर डाली, तो बाहर डालते ही उन्होंने तुरंत, वो बाहर आते ही भगवान के सामने खड़े हो गए, और तब वो समझ गए कि अखिल ब्रह्मांड नायक जगत के नाथ कौन है, ये जगन्नाथ है, कृष्ण है। और कहां ये लीला घटित हो रही थी, जगन्नाथपुरी में। ये जगन्नाथपुरी में आप कितने लोग गए हैं, जगन्नाथपुरी बहुत कम है, चाहिए। जगन्नाथपुरी में जो वट वृक्ष है नीलाचल जगन्नाथ टेम्पल के पास, वहा ये स्थान, ये लीला घटित हुई थी। और जब ये मार्कंडेय ऋषि बाहर आकर उन्होंने देखा भगवान को, और भगवान देखकर उनकी ओर हंसने लगे। और भगवान ने कहा कि हे, भगवान उनसे बोलने लगे कि हे मार्कंडेय, जो स्थान है ये मेरा स्थान जगन्नाथपुरी, या पुरुषोत्तम क्षेत्र, या शंख क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या इधर ये प्रलय आदि जो भी होता है उससे प्रभावित नहीं होता, और कोई व्यक्ति यदि शाश्वत सुख की आकांक्षा रखता है, या माँ के गर्भ में बारंबार जाने के से मुक्त होना चाहता है, तो उस व्यक्ति को इस मेरे जो स्थान है उसका आश्रय लेना होगा। इस प्रकार से जो जगन्नाथपुरी स्थान है, भगवान का जो धाम है, वो इस भौतिक जगत से परे है। इसलिए भगवान कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एतद् ब्रवीमि ते प्रसाद भंगे तत्स्थानम् न दिशामि कदाक्षण। कहते कि है साधुगण कि मैं ये जो स्थान सत्य सत्य बोल रहा हूं, सत्यम सत्यम गुणा सत्यम, तीन बार गहरे में सत्य बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। भगवान को लगता है कि यहाँ लोगों को विश्वास नहीं होता, तो भगवान रिपीट कर रहे हैं। कहते कि मैं बोल रहा हूं कि प्रसाद भंगे तत् स्थान, प्रसाद भंगे मतलब ये स्थान का जो मंदिर है वो भग्न भी हो जाए जगन्नाथपुरी का, लेकिन उस स्थान को मैं कदापि छोड़ता नहीं हूं। हाँ, ये भगवान के वचन है। हाँ, इसलिए जब इन मुनियों ने ये सब चीजें उनसे सुनी जय ऋषि से, तो उन्होंने ने कहा कि आप और सुनाओ, वयम न मित्र प्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश सम्मतानां रस ज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे की है। जैमिनी ऋषि शुद्ध गोस्वामी के लिए भी नैमिषारण्य के ऋषि ये श्लोक बोलते हैं कि हम सुनने की लालसा हमारी बढ़ती जा रही है और क्या करिए अब और श्रवण कराइए उत्तम श्लोक जो कृष्ण है। हाँ, क्योंकि सुनते सुनते हमारे आनंद का वर्धन हो रहा है। तो मुनियों ने पूछा ऐसा ये जो स्थान जिसका आपने इतना वर्णन किया ये कहाँ है, कस्मिन देशे द्विज श्रेष्ठ क्षेत्र पुरुषोत्तमा यत्र नारायण साक्षात दाल रूपी प्रकाशते, कौन सा वो स्थान है जहां साक्षात भगवान कृष्ण नारायण इस दाल रूप में वहां निवास कर रहे हैं। तो जैमिनी ऋषि ने कहा उत्कलो नाम देशोस्ति ख्यात परम पावना यत्र तीर्थान्य कानी पुण्यानायत जानी च। उन्होंने कहा कि वो जो स्थान है वो उत्कल नाम से जाना जाता है या पुण्य देश। उत्कल को क्या नाम है उसका, ओरिसा। वो स्थान जो इतना अधिक पुण्यवान है वो कहने लगे किलास्ते भारत वर्षे उत्कलम पावनम महत चतुर्भुजा जना सर्वे दृश्यन्ते तत्र वासिना। उत्कल ऐसा स्थान है कि जहां सारे जो जीव भगवत सेवा में लगे हैं चतुर्भुज हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से वो वर्णन करते गए हैं उत्कल की भूमिका पुरुषोत्तम क्षेत्र का। और उन्होंने कहा कि ये जो ओरिसा है उत्कल भूमि है, भगवत भूमि में है, पुण्य स्थान है, पवित्र भूमि है, ये चार स्थानों में बटा हुआ है। एक तो उन्होंने कहा वो वहां एक स्थान है, चार क्षेत्र है, शंख क्षेत्र। जगन्नाथपुरी को दूसरा नाम क्या है, शंख क्षेत्र, क्योंकि उसका आकार उस धाम का शंख के समान है। वृंदावन का आकार हजारों सहस्र दल का जो कमल है, सहस्र दल पंखुड़ियां है, उसके समान वृंदावन धाम का आकार है, जगन्नाथपुरी का शंख के समान, इसलिए उसको शंख क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा क्षेत्र है पद्म क्षेत्र जो कोणार्क का एरिया है, और तीसरा है भुवनेश्वर जिसको चक्र क्षेत्र कहा जाता है, और चौथा है गदा क्षेत्र जो जो जाजपुर है ओडिशा में। आप थोड़े से परिचित हो इन स्थान से। तो फिर लक्ष्मी या बताते जा रही हैं, उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा आगे चलकर एक महान राजा होंगे जिनके कारण भगवान जगन्नाथ क्या होंगे, प्रकट होंगे। उस राजा का नाम होगा इंद्रद्युम्नो नाम राजा युगे सत्य भविष्यति वैष्णव सर्व यज्ञानां महार्ता शास्त्र कोविदा अत्रागत्ये महाभक्ति करिष्यति नृपोत्तमः। उन्होंने कहा ये श्लोक लक्ष्मी बोल रही है ब्रह्मा को। उन्होंने कहा हे ब्रह्मा सत्य युग में एक महान राजा होंगे जिनका नाम होगा इंद्रद्युम्न, वो भविष्य में बहुत सारे यज्ञों को करेंगे और महान भक्त होंगे, और उनकी भक्ति के कारण भगवान इस जगत में प्रकट होंगे, अपने मूल रूप जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। और इसलिए ब्रह्मा तुम क्या करो, ऐसे राजा इंद्रद्युम्न की सहायता करो और तुम कारण बन जाओ जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ को प्रकट करने के लिए एक महान राजा जन्म लेते हैं और जिनका नाम क्या है, इंद्रद्युम्न। तो भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कई लीलाएं हैं, विशेष रूप से शास्त्रों में तीन लीलाओं का वर्णन आता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे दो लीलाओं का वर्णन करने का, हमारे पास समय हो गया है। तो भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य बहुत पहले होता है, एक महान जगन्नाथ जगत सुभद्र महारानी के श्री श्री राधे मदन मोहन के। तो भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं एक महान भक्त के लिए जिनका नाम क्या था, राजा इंद्रद्युम्न था। तो महाराज इंद्रद्युम्न जो बहुत अधिक फेमस राजा थे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम गुंडीचा था, और ये ब्रह्मा के 50 साल की आयु से पहले ही ये लीला घटित हुई है। अभी ब्रह्मा की आयु क्या है? 51 साल के हो गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का आयु अभी 51 साल के हैं, अभी बूढ़े नहीं हुए, लेकिन उनका फोटो देखते तो क्या दिखाते लोग, बहुत सारे पितामह हैं, सबसे बड़ा जीव है, तो लोगों को लगता है कि सब पहले में तो बूढ़ा होगा, लेकिन नहीं, ब्रह्मा यंग है। तो ऐसे ब्रह्मा की शुरुआत के 50 साल के समय में ये महान राजा हुए थे, अवंती देश में जिसका नाम उज्जैन है। ब्रह्मा की पीढ़ी में ही 5वीं पीढ़ी में ये प्रकट होते हैं। तो ऐसे जो इंद्रद्युम्न है, तो एक दिन, क्योंकि अलग अलग कल्पों के अनुसार अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण, इन पुराणों में जगन्नाथ के प्राकट्य लीला का वर्णन हमें प्राप्त होता है श्रवण करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जब ये राजा इंद्रद्युम्न अपने कई मंत्रियों के साथ एक बार सभा में बैठे थे, जिसमें ऋषि थे, मुनि थे, संत थे, कवि थे, सारे मंत्रीगण थे, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, यत्र साक्षात जगन्नाथम पश्यामि तेन चक्षुषः, मैं तो साक्षात जगन्नाथ को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, ऐसा कोई स्थान है पृथ्वी पर जहां मैं उनका दर्शन कर सकूं? हाँ, तो ये उनके अंदर बहुत अधिक लालसा थी, और वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को जानने के लिए कोई और मूल्य नहीं चाहिए, एक ही मूल्य देने के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। तत्र मूल्यम लवलमे कलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते, भगवान को प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति के पास एक ही योग्यता चाहिए, लालसा, लवल्य, ग्रीड, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी लालसा इस राजा के अंदर थी। तो फिर एक साधु जब भ्रमण करते करते उनके देश में आया था, और ये राजा क्या करते थे, जो साधुगण है, संत ऋषिगण है, उनके लिए जहां वो निवास करते थे उसके सामने वाला एक एरिया कंपाउंड उन्होंने बनाया था, आंगन, जिसमें सारे साधु महर्षि जाके रहते थे, उनकी सेवाएं होती थी। तो एक दिन इस राजा ने सुना कि साधुगण आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक विशेष स्थान है नीलाचल, जहां भगवान साक्षात अपने विशेष रूप में निवास करते हैं। तो ये सुनकर नील माधव के रूप में निवास करते हैं, ये सुनकर राजा की लालसा और बढ़ गई। और फिर उस दरबार में जब, उस सभा में जब ये चर्चा कर रहे थे, तो राजा ने उनमें से एक ऋषि खड़ा हो गया। स्कंद पुराण में थोड़ा सा डिफरेंट वर्णन आता है, उसमें आता है कि उस सभा में एक साधु खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं कई स्थानों का भ्रमण कर चुका हूं, और भ्रमण करते करते मैं एक स्थान में आ गया, उल्र देश इति ख्याते वर्ष भारत संघ के दक्षिणो शुद्ध तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम, कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये उल्र देश या ओडिशा में है, जहां मैं आया और जहां मैंने देखा कि एक नील पर्वत है, नीलगिरी जो पर्वत है, वहां 2 माइल फैला हुआ एक वट वृक्ष है, उसके नीचे भगवान नील माधव के निवास रूप में निवास करते हैं, और हर रोज वहां देवतागण उनकी स्तुति और उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। तो इन्होंने कहा, केवल मैं वहां रहने से, नील माधव का रोज दर्शन करने से मुझे पता ही नहीं चला, 1 साल तक मैं रहा और मेरे हृदय में भगवान कृष्ण के लिए गहरा अनुराग जागृत हुआ। तो वहां भगवान कैसे निवास करते हैं? उन्होंने कहा, यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति यो ददाति कृपानिधि, वहां तो भगवान जगन्नाथ के रूप में निवास करते हैं, जिन्होंने शंख चक्र गदा अपने हाथ में धारण करके रखा है, और वही भगवान जीवों को केवल अपना दर्शन देकर मुक्त करते हैं। तो जब उस साधु के द्वारा राजा ने सुना, उस साधु ने कहा, मैं कोई आपसे दान या कुछ भेंट आदि की लालसा नहीं रख रहा हूं, ये सब बातें बताकर, हाँ, मैं तो केवल भगवान के कृष्ण के स्मरण में मग्न हूं। और उन्होंने कहा, हे राजा, तुम भी सदैव कृष्ण का स्मरण करो, दो चीज उस साधु ने राजेंद्र दुग्न को कही कि आप सदैव कृष्ण का स्मरण करो और दूसरा क्या करो, सदैव उनके नामों का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर राजा ने जब ये बात सुनी तो वो राजा के अंदर और अधिक लालसा जागृत हुई, बच्चे को बाहर ले जाएंगे। तो जब राजा ने ये चीज सुनी तो राजा के अंदर बहुत अधिक लालसा जागृत हुई और राजा ने कहा, वो बहुत अधिक विरह महसूस करने लगे। राजा ने कहा कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं अपनी आंखों से। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान को ढूंढो कहां ये भगवान नील बादल के रूप में निवास करते हैं। तो फिर उन्होंने अपने सारे अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उनके एक मंत्री थे, पुरोहित थे, उनके भाई थे जिनका नाम था विद्यापति। विद्यापति को जब उन्होंने भेजा, विद्यापति को उन्होंने भेजा तो विद्यापति भी भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को ढूंढने के लिए अपने स्थान से निकल पड़े उस उज्जैन अवंती से। और जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो यात्रा करते करते वो एक ही चीज का स्मरण कर रहे थे, अहो में सफलम जन्म सुकल्पा शर्वरीच में द्रक्षामि यद भगवतो मुख पद्म अघापम, कि कितना मैं भाग्यवान हूं मुझे बाहर निकलने का मौका मिला है और वो भी नील माधव को सर्च करने की सेवा मुझे मिली है। जरूर मेरे अभी कुछ ही दिनों में मैं भगवान नील माधव या कृष्ण का दर्शन करने वाला हूँ, जिनके मुख को देखने मात्र से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे चक्रपाणी, चक्रपाणी में जिन्होंने चक्र हाथ में धारण किया है, ऐसे चक्रपाणी कृष्ण को मैं देखूंगा जो केवल श्रवण आदि भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विद्यापति हैं, हम भ्रमण करने के लिए निकल पड़े भगवान की खोज में। अब ऐसे विद्यापति खोज करते करते ओडिशा में पहुंचते हैं नील पर्वत के पास, जहां जाते हुए जब ढूंढते ढूंढते गए तो उन्होंने देखा कि एक 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 बस्ती थी जहां कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वो कृष्ण कथा कर रहे थे, आपस में कृष्ण चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने इस चर्चा को सुना और उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो रहने का स्थान प्रदान कीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपको रहने का स्थान हमारे जो बस्ती है या जो विलेज है उसके जो मुखिया हैं वो प्रदान कर सकते हैं। तो उस स्थान का नाम शबरदह या शबर बस्ती था। और ये जब वहां पहुंचे तो वहां उस बस्ती के जो विलेज के मुखिया थे विश्व बसु। तो ये जब वो पहुंचे तो उनके घर में वे विश्व बसु नहीं थे, उनकी पुत्री थी ललिता, यंग थी। तो ये जब गए उनके पास रहने लगे और उनके जो पिता हैं ललिता के विश्व बसु जंगल से वापस आ रहे थे, घर में आए देखा कि उनके शरीर से बहुत अधिक सुगंध निकल रही है और उन्होंने कई सारे व्यंजन ऑफर किए हुए जो व्यंजन हैं भोग या प्रसाद हैं वो अपने साथ लेके आए थे। जब ये विद्यापति को मिलते हैं तो उनको प्रसाद आदि देते हैं और विद्यापति उनके घर में कुछ दिनों के लिए निवास करता है, बल्कि ये सर्च करने के लिए निकला था नील माधव को। फिर कुछ समय बीतता है तो ये विद्यापति विश्ववासी की जो पुत्री है ललिता से विवाह कर लेता है। और कुछ समय के बाद ये विद्यापति पूछता है अपने पत्नी से कि तुम्हारे पिता रोज कहाँ जाते हैं, मैं देखता हूँ कि वो सुबह चले जाते हैं और जब वो आते हैं तो उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है और कई सारे वो नाना प्रकार के व्यंजन दिव्य व्यंजन लेके आते हैं जो इस भौतिक पृथ्वी में प्राप्त करना दुर्लभ है। तो ये ललिता जानती थी कि मेरे पिता विश्व वसु कहाँ जाते हैं रोज, नील पर्वत में जहाँ वट वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी के साथ नील माधव के रूप में निवास करते हैं। माधव का मतलब क्या है, धव का मतलब है जो पति है और माँ का मतलब है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी पति है उनको माधव कहा जाता है। तो ललिता बता नहीं रही थी क्योंकि उनके पिता ने मना किया था इस रहस्य को बताने के लिए। तो लेकिन जब विद्यापति उनको फोर्स करते हैं तो ललिता बताती हैं कि मेरे जो पिता हैं रोज नीलम माधव की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे विद्यापति भगवान की खोज करने के लिए निकले थे और फाइनली उनको नील माधव का पता चल जाता है। तो हम आगे का वर्णन कल करेंगे, इसी प्राकट्य लीला को कंटिन्यू करते हुए। और भगवान की प्राकट्य की दो लीलाएं हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे, और साथ साथ भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है उसकी भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ पावन श्रील प्रभुपाद की।